ओम शांति। सूरज भाई जी जिनका लौकिक जन्म 1951 में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में हुआ, आपने मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री भी प्राप्त की। 1964 में आप इस संस्था के टच में आए और 1968 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। आप इस संस्था की 18 विंग्स में से स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के कोऑर्डिनेटर तो हैं ही, साथ साथ आप राजयोग एजुकेशन और अनुसंधान के आर्ट कल्चर विंग, एजुकेशन विंग और मीडिया विंग के भी सदस्य हैं। आपने भारत के प्रायः सभी प्रांतों में जाकर के तनाव मुक्त जीवन शैली, लाइफ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट और राजयोग का प्रयोग आदि विषयों पर वक्तव्य भी दिए और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के अनेक देशों का ईश्वरीय सेवा अर्थ आपने भ्रमण भी किया। और अब तक आपने देश विदेश में सैकड़ों सेमिनार्स व सम्मेलनों में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व भी किया और सतत कर भी रहे हैं। वर्तमान समय में आप ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। आज का आपका विषय है स्वस्थ एवं सुखद जीवन प्रणाली, क्योंकि बाहरी रूप से तो हम सभी देख लेते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन वास्तव में तो हमारा ये जीवन उस हिमशिला के समान है जिसका 90% भाग आंतरिक और 10% ही बाहरी रूप से दिखाई देता है। तो बाहरी रूप से हष्टपुष्ट होना केवल 10% ही है, लेकिन 90% डिपेंड करता है कि हमारा अंतर मन क्या सोच रहा है, क्योंकि जब तक उसमें ही पॉजिटिविटी नहीं होगी, उसमें ही शुभ भावनाएं नहीं होंगी, तब तक हम इस जीवन का आनंद भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय सूरज भाई जी।
ओम शांति। यहाँ आकर तो आप सब स्वस्थ भी होंगे और खुश सुखी, बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश हैं, क्योंकि खाना भी नहीं बनाना पड़ता, इसलिए भी खुश हैं ना माताएं, तो स्पेसिफिकली बहुत खुश हैं, खाना अच्छा भी लगता है, लगता है, और भाई भी खुश हैं सभी। खुशी जैसी खुराक नहीं, स्वस्थ जीवन का सबसे पहला फॉर्मूला खुश रहना, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस हमारी बहुत आगे तो बढ़ चुकी है, परंतु जिस भी डॉक्टर से गहराई से बात की जाए कि बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, तो एक ही उत्तर होता है, कौन सा? टेंशन। हमारे यहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट भी बहुत हैं ज्ञान में इधर उधर, मैं उनसे बहुत चर्चा करता हूँ कि भाई इतनी मेडिकल साइंस आगे बढ़ गई, जब कैंसर शुरू हो तब पता लग जाए तो उपचार हो सकता है, परंतु जब बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है तभी पता चलता है। क्या कारण है? टेंशन। हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और नीचे जो एक डॉक्टर हैं, वो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा और जीवन में कुछ चीजें बदल कर हार्ट पेशेंट्स को ठीक करते हैं। 2200 से ज्यादा हार्ट पेशेंट ठीक किए उन्होंने पिछले 12-13 सालों में। वहां भी यही सिखाया जाता है कि टेंशन ही हार्ट की बीमारियों का मुख्य कारण है, और भी डायबिटीज ये आजकल की मुख्य बीमारियां, इन्हें मैं हंसी में कहा करता हूँ वीआईपी बीमारी हैं ये सब, क्योंकि जितने बड़े लोग हैं उनको ज्यादा होती हैं, साधारण लोगों को कम होती हैं, गांव वालों को मुश्किल से ही पता होता होगा हाई ब्लड प्रेशर क्या है, डायबिटीज क्या है। खूब गन्ना चूसते हैं, गुड़ चीनी, खूब मिठाई खाते हैं, लेकिन शहरों में ज्यादा है। इसका भी कारण एक ही बताते हैं लोग, डॉक्टर लोग, टेंशन। तो हमें एक ऐसा जीवन जीना सीखना है जिसमें हम जीवन का आनंद ले सकें। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, भगवान की दी हुई बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट है, हम इसका आनंद लें। प्राय देखने में ये आता है बुद्धिमान मनुष्य जीवन का आनंद कम ले पा रहा है। आज सभी बैठकर गहराई से चिंतन करेंगे। अपने ज्ञान के टॉपिक्स तो बहुत सुन लिए हैं, आज ये विषय है बिल्कुल अपने बारे में। मनुष्य कहाँ क्या गलती करता है, क्यों बुद्धिमान मनुष्य सुखी नहीं है, पशु पक्षी सुखी हैं या नहीं? कोई भैंस जाती है हाई ब्लड प्रेशर चेक कराने? देखा है कभी किसी कुत्ते को हाई ब्लड प्रेशर हुआ हो, डायबिटीज हुई हो? वो कुछ ज्यादा सुखी नजर आते हैं, लड़ाई भी कम है उनमें, मनुष्यों में ही ज्यादा लड़ाई है। तो सभी चिंतन करेंगे और आज से अपने विचारों में विशेष रूप से कुछ चेंज लाएंगे और जीवन को सुखी बनाएंगे। जीवन में सुख छीनने वाले सूक्ष्म रूप से बहुत से कारण हैं, क्योंकि मेरा नाता लोगों के पर्सनल जीवन से बहुत रहता है। मेरे पास बहुत सारे फोन समस्याओं के आते हैं, उनका समाधान कैसे करें। तो समस्याओं ने आज मनुष्य के सुख को छीन लिया है, ऐसा देखने में आ रहा है। नींद ना आने की बीमारी दिनों दिन बढ़ रही है, डिप्रेशन दिनों दिन बढ़ रहा है, टेंशन के साथ ये। मुझे कुछ आभास होते हैं भविष्य के, मुझे ऐसा लगता है कि 5-7 सालों में ये दोनों बीमारियां भयानक रूप ले लेंगी, महामारी बनकर आ जाएंगी संसार में। हमारे देश में तो खुशी का माहौल अभी भी बहुत ज्यादा है, ये मैं उस तुलना में कह रहा हूं। आप में से कोई अमेरिका गए हो, ब्रिटेन गए हो, तो वहां के देशों में भारत की अपेक्षा कम खुशी है। लोगों का जीवन फास्ट है, एकदम भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत लोग अकेले रहते हैं, परिवार टूटते रहते हैं वहां। कम से कम हमारे देश में एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि फैमिली लाइफ है, भले ही फैमिली में संघर्ष भी हो, लेकिन फैमिली में जाकर मनुष्य कई तरह के दुखों को तो भूल ही जाता है या नहीं? बच्चे पास आ जाएं, छोटे बच्चे हैं, गोद में आ जाएं, कोई कंधे पे चढ़ जाए, कोई बाल खींचने लगे, तो आधी टेंशन तो खत्म हो जाती है ना। वहां कुछ दूसरा माहौल होता है। तो हम एक ऐसे देश के वासी हैं, आप सबने सुन लिया होगा, जो देव भूमि है, जहां स्वयं भगवान आते हैं, जो भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। हम भारतवासी अपने गौरव को भूलकर आज विदेशों की ओर प्यासी नजरों से देखते हैं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हम भी वैसे पहने, वो कैसे रहते हैं वैसे हम भी रहें, परंतु सारे संसार को भारत ने फॉलो किया है अब तक। हमें जानना चाहिए भारत ही विश्व का गुरु था, संपूर्ण विद्याएं भारत से ही संसार में गई, यहाँ से प्रचार प्रसार हुआ, सबसे अधिक धनवान देश भी भारत ही था। आप में से जो हिस्ट्री के व्यक्ति रहे हो, मैं तो एक दिन पढ़ रहा था, किसी ने अनुमान लगाकर एक विश्लेषण किया था कि अकबर के काल में सारे संसार की चौथाई संपत्ति भारत में हुआ करती थी, और जब गुप्त काल था, इतिहास पढ़ने वाले जानते होंगे, दूसरी शताब्दी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये काल भारत में स्वर्ण काल कहलाता था। संसार की आधी संपत्ति भारत में हुआ करती थी। हमसे सब कुछ संसार में गया है। अब एक और चीज हमसे संसार में जाएगी और जा रही है, वो है ईश्वरीय ज्ञान, अध्यात्म, स्पिरिचुअल पावर। इसके द्वारा संसार की काया बदलेगी। तो हम सभी फिर से आ जाए टॉपिक पर, मनुष्य का अपना चिंतन उसके सुखों का दुखों का कारण है। सोच लें सभी, एक व्यक्ति भोजन खा रहा है, एक व्यक्ति है आनंद लेता है भोजन का, जैसा भी भोजन है, दूसरा व्यक्ति भोजन खा रहा है वो चिड़चिड़ा हो रहा है, जरा सी कोई चीज अच्छी नहीं, परेशान हो रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, नमक कम है तो उसे गुस्सा आ रहा है, वो उसका आनंद नहीं ले रहा है। रोज आप घरों में देखते होंगे, हमारा चिंतन सुखों का या दुखों का, परेशानियों का या आनंद का, हार महसूस होने का या सदा उमंग उत्साह में रहने का, निराशा फील करने का या सदा आगे बढ़ते रहने का आधार है। हम बहुत ध्यान दें हम क्या सोचते हैं। सबसे बड़ी विकृति आज मनुष्य के पास आई है उसके चिंतन में। देखिए, आप सभी ने यहाँ एक चीज अनुभव की होगी, सभी जल्दी उठते हैं सवेरे, उठते हैं, यहाँ तो सभी उठते होंगे, कोई कोई सोते होंगे देर तक, बाकी तो सब उठते हैं ना जल्दी। सवेरे जल्दी उठकर आप जरा कमरे से बाहर आ जाओ, खुले आकाश में, आपको महसूस होगा सुंदर विचारों का फ्लो मन में, बहुत अच्छा लगेगा, प्रकृति का सौंदर्य, अगर चांद चमक रहा हो आसमान में तो प्रकृति का प्रभाव हमारे तन पर और हमारे मन पर बहुत सुंदर होगा। लेकिन लोगों की ये जीवन प्रणाली बदल गई, देर से सोना, देर से उठना। पहले क्या कहते थे सब, बचपन में सबने पढ़ लिया, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन। मैं कुछ और भी जोड़ देता हूं इनमें, हेल्दी, हैप्पी, वाइज। आज उल्टा कर दिया ना सबने, लेट टू बेड, किताबों में वही लिखा है पर जीवन में उल्टा लिख दिया, लेट टू बेड, लेट टू राइज मेक्स ए मैन। अब इसका सबका उल्टा, अनहेल्दी, अनहैप्पी, अनवाइज। माताएं देख रही हैं हम क्या बोल रहे हैं, देर से सोने से, देर से उठने से मनुष्य की खुशी भी जाती है, उसकी बुद्धि पर भी बुरा असर पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदलें। अब टीवी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों ने दो नुकसान कर दिए बहुत बड़े, एक तो ये टीवी देखकर सोएंगे रात को। लोग कहते हैं बुजुर्गों के लिए टीवी बहुत अच्छी चीज आ गई है, टाइम पास का साधन बन गया है लेकिन कुछ और चीजें भी जाननी बाकी है। दूसरा नुकसान क्या हुआ, मनुष्य की सोशल लाइफ को कम कर दिया है, टाइम नहीं है जो एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे का हालचाल पूछें, किताबें पढ़ने का भी टाइम नहीं है लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारा टाइम टीवी के सामने नेट पर बैठकर चला जाता है। इनसे नुकसान क्या हो रहा है हम समझ लें। मैं आपको थोड़ी गहराई की ओर ले चलना चाहता हूं। आप सभी ने यहां जान लिया हम कौन हैं, कौन है हम सभी, आत्मा में दो शक्तियां मुख्य, मन और बुद्धि, सभी ने सुन लिया ना। आपको ध्यान देना है, ये दोनों हमारे पास हैं। आज मनुष्य बुद्धिमान बहुत है, लोग कहते हैं बहुत सारे वर्षों के बाद ऐसी विकसित और विकासशील सभ्यता हम देख रहे हैं, मानव सभ्यता। मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, लेकिन इसमें अगर मैं ये जोड़ दूं कि आज मनुष्य जितना बुद्धिमान है उतना ही परेशान भी है, ठीक है या नहीं? अब से 100 साल पहले अंग्रेजों के राज में गरीबी थी, पढ़ाई नहीं थी, बहुत कुछ नहीं था। आज की बेत में कहें केवल 5-7% था, लेकिन लोग सुखी, अधिक चरित्रवान, बहुत ईमानदार, संतुष्ट थे ना। आज बहुत कुछ होने के बाद धन बहुत बढ़ गया, मनुष्य की बुद्धि का विकास, साधनों का विकास। माताओं को पता है उठते ही पहले चक्की चलाई जाती थी, घर घर में चक्की चलती थी, और जब तक घर घर में चक्की चली डॉक्टरों के पास जाने का चक्कर नहीं था। माताएं जानती है, चक्की बंद हुई चक्कर शुरू हो गया, हुआ या नहीं? सवेरे इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी माताओं की, पसीना इतना आ जाता था कि बीमारी दूर भाग जाती थी, था या नहीं? माताएं बुजुर्ग बैठी है, अब बटन दबाओ सब कुछ हाजिर है। तो मनुष्य सुखों की खोज में निकला, सुखों की खोज की ना विज्ञान ने, हर मनुष्य का जीवन सुखी हो जाए, लेकिन परिणाम कुछ अलग आ गया हमारे सामने। तो हमें अच्छी तरह सोचना है। आप चले थे ट्रेन में बैठकर पंजाब की ओर, पहुंच गए कर्नाटक, उतरे गाड़ी से तो देखा अरे बेंगलोर लिखा हुआ है यहाँ तो स्टेशन पे, तो क्या समझेंगे? भाई गड़बड़ हो गई, कुछ गलती हो गई, गलत ट्रेन पकड़ ली गई, रास्ते में किसी ने टोका भी नहीं। यही हाल हुआ मनुष्य का। हम सब चले थे सुखों की खोज में, पर सुख दूर होते गए। मेडिकल साइंस का विस्तार हुआ कि मनुष्य को स्वस्थ बना दिया जाए, पर रोग दिनों दिन बढ़ते आए। साधन संसार में बढ़े, धन बढ़ा, एजुकेशन बढ़ी कि मनुष्य सुखी हो जाए, वो बुद्धिमान हो जाए, पर होता गया उसका विपरीत। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार की अधिकतम चर्चा हो रही है। हमारे यहाँ अखबार आते हैं, रोज एक बड़ा लेख भ्रष्टाचार के बारे में आता है। अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, आप बुरा न मानो, गांव के किसान लोग ज्यादा भ्रष्ट हैं या बहुत पढ़े लिखे अधिकारी? ठीक बात है ना? मैं बताना नहीं चाहता था आपको बुरा लग जाए। एजुकेशन ने क्या सचमुच मनुष्य को एजुकेट किया? जितनी बड़ी डिग्री, तो गांव के किसान लोग तो उन्हें तो बेचारों को पता भी नहीं होगा कि भाई किससे कुछ लिया भी जाता है, कि डर लगता है उन्हें लेते। मैं गांव से आया हूं, मुझे याद है अब से 50 साल पहले गांव में जो कुछ पैदा होता था, जिनको पैदा नहीं होता था, मक्की पैदा हुई तो सबके घरों में मक्की बांटा करते थे। त्योहार आ गया, जिसके घर में दूध नहीं तो एक एक लोटा दूध बहुत सारे लोग उसको पहुंचा देते थे। गांव में गुड़ बनता था, मुझे याद है रोज शाम को फ्री था, जो भी जाए बैठकर खाए। कैसी सुंदर कल्चर थी 50 साल पहले भी हमारे देश की, उससे 50 साल पहले, उससे 100 साल, 200 साल पहले, 500 साल पहले, कितनी सुंदर रही होगी यहाँ की कल्चर। और आप सबको यहाँ आकर ये मालूम हो गया, हम सभी सतयुग में कौन थे? देवी देवता थे, देव सभ्यता थी हमारे यहाँ, हम सब देवी देवता थे। मैं भी 2-4 बार हिमाचल में गया, हिमालय में भी गया, वहां तो अभी भी मान्यता है कि हमारे यहाँ देवता रहते थे, देव नगरी, उधर तो देव नगरी कहते हैं ना। तो हमारी सभ्यता बहुत महान थी। सुख देंगे तो सुख डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। दुख देंगे, दुख भी डबल होकर हमारे पास आ जाएगा। खुशी बांटेंगे, हम खुशी के भंडार बन जाएंगे। और किसी की खुशी छीनेंगे तो हमारी खुशी भी छीनने वाला कोई मिल जाएगा। हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें। आज मनुष्य में एक विशेष बुराई ने घर कर लिया है, सब देख लें अपने जीवन को, वो है स्वार्थ। पहले मैं, सब जगह आ गया है ये। इस स्वार्थ ने मनुष्य के अंदर कई बुराइयों को जन्म दिया। घर घर में झगड़े पैदा हो गए, पहले मैं, स्वार्थ। तो हम सीख लें, हमें दूसरों को सुख देना है। अब एक संकल्प ले लें, यहां मेरे पास जितने भी लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आ रही है, मैं उनको विधि बताता हूं नींद आने की, गोली के बिना, और बिल्कुल सफल होते हैं। जितनों को मैंने सिखाया कि ऐसे नींद आनी है, उनको आई नींद। आप में से भी किसी को ना आती हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं उन्हें हंसी में एक बात जरूर कह देता हूं, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है बताओ, क्योंकि तुमने बहुतों की नींद उड़ाई है। रहस्य यही है, नहीं इसमें ताली नहीं बजानी, नींद आए तो बजानी। देखिए कर्म की गति यही है। आप जब ज्ञान और योग की बहुत अच्छी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपका टॉपिक भी होगा कल एक कलिया परसों, कि हमारे कर्म तो परछाई की तरह हमारे साथ चलते हैं। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता संसार में। हमने किसी के 10 रुपए ले लिए और दिए नहीं और हम खुश हो जाएं कि वाह हम बड़े अच्छे हैं, हमें 10 ब्याज सहित देने पड़ेंगे, चाहे 1000 साल बाद देने पड़े। ये कर्म गति इतनी सूक्ष्म है, क्योंकि जो कुछ हम कर्म करते हैं, मैं आपको एक ये अति गुह्य रहस्य है, इसको केवल बहुत अच्छे ज्ञानवान ज्यादा समझ सकते हैं, फिर भी मैं आपके सामने रख देता हूं, आप बुद्धिमान हैं, इसको समझने की कोशिश करें। जो भी कर्म हम करते हैं उसकी सूक्ष्म तरंगे हमारे ब्रेन में प्रिंट होती जाती हैं। हजारों साल से जो कुछ कर्म हमने किए हैं, कैसा भी, किसी के लिए बुरा सोचा भी है, वो भी कर्म हमारे ब्रेन में सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रिंट है, अंकित है, छपा हुआ है, वो रिएक्ट करेगा ही। उसका फल इसलिए मिलना है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पढ़ा होगा ना सभी ने, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर कर्म का फल मिलना है, इसलिए जिसको सुखी रहना है वो अपने स्वार्थवश किसी को कष्ट न पहुंचाए। चेक कर लें आप परिवारों में अहंकारवश, क्रोधवश या स्वार्थवश, यदि हम दूसरे से बुरा व्यवहार करते हैं, यदि हम दूसरे की खुशी छीनते हैं, यदि हम दूसरे का चैन छीनते हैं, तो भला हम चैन से कैसे सो पाएंगे? रिएक्शन होगा उसका। वो व्यक्ति बेचारा मान लो कमजोर है, हमें कुछ बोल नहीं पाता है, चुपचाप रो लेता है अंदर जाके, लेकिन जो कुछ हमने बोला वो इधर प्रिंट हो गया, वो रिएक्ट करेगा तो परेशान करेगा हमें। इस पर सभी ध्यान देंगे। एक सुंदर फॉर्मूला ये, हमें दूसरों को सुख देना है। जल्दी उठना, जल्दी सोना, जल्दी खाना, कम खाना, ये भी हेल्दी रहने की विधि है। जल्दी खाना, कम खाना, जल्दी सोना, डॉक्टर लोग बताते हैं, हमारे यहाँ भी सिखाते हैं कि 12 से पहले की नींद बहुत गहरी होती है, भोजन हजम करने के लिए बहुत आवश्यक है वो नींद। लेकिन जो लोग सोते ही 12 बजे के बाद हैं और खाते भी 11-12 बजे हैं, उनके द्वारा खाया गया भोजन ठीक से हजम नहीं होता, जिससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। सबको इतना तो पता ही है, सारी बीमारियों का मूल है पेट, जानते हैं ना। पेट माना भोजन हजम न होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, गैसेज हो जाना, एसिडिटी हो जाना, इनसे सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो ये दो नियम हम जीवन में अपनाएं, सुख देने के संबंध में भी हम बोल के द्वारा दूसरों को सुख दें। कुछ माताएं अभी भी सो गई हैं, रात को शायद नींद नहीं आई होगी, जगाओ अपने पड़ोसी माताओं को सभी, अरे जगा दो कि अमृत बरस रहा है, जागो 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 माताओं, जग गए सभी, जग गए भी। रात को नहीं सोते ना तो दिन में नींद आ जाती है। बोल के द्वारा दूसरों को सुख देना, कुछ भी बोल देना, ये तो सहज काम है, लेकिन संयमित बोल बोलना, सुखदाई बोल बोलना, दूसरे को अप्रिशिएट करना, दूसरे की प्रशंसा करना, ये है एक बुद्धिमान मनुष्य की पहचान। तो हम सभी बुद्धिमान हैं, एक है बुद्धि, दूसरा है मन। अब हम मन पर आ जाएं। आज मनुष्य ये बिल्कुल भूल गया है कि मन की शक्ति ही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति आजकल, धन, धन सोचते हैं। जिसके बाद धन है वो सबसे बड़ा VIP, कैसे भी धन कमाओ, धन चाहिए बहुत ज्यादा। लेकिन हमें जानना चाहिए सबसे बड़ी शक्ति है मन की, और वो शक्ति हमारे पास है। एक बहुत अच्छी चीज आप लिख लें जीवन में, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। हम सब शक्तिशाली हैं, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जीवन में परिस्थिति आएंगी, समस्याएं आएंगी, संबंधों में कटुता भी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसके बीज कहीं ना कहीं हमने ही बोए हैं। बिल्कुल ध्यान से जान लें सभी, जो कुछ हमारे चारों ओर हो रहा है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं और कोई नहीं। मनुष्य दूसरे को दोष देता है, ये गलती है। अपने को ढूंढना है, चेक करना है अपने अंदर में, बीज मैंने बोए हैं, उसको पानी भी दिया है, धूप भी दी है, तो वृक्ष पैदा हो गया समस्याओं का। अब हमें समस्याओं से बाहर निकलना है, इसके लिए आप यहाँ आए हैं। आपको अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा आप यहाँ क्यों आए हैं, जब दूसरी बार आएंगे ना तो सचमुच पता लग जाएगा आप यहाँ पहली बार क्यों आए थे। किसने बुलाया आपको, किसने बुलाया आपको? कई सोच रहे होंगे बहुत दिनों से बहने पीछे लगी हुई थी हमारे, आओ आओ हम आते नहीं थे, आखिर पकड़ के ले आई यहाँ। बहुत लोग बहनों से परेशान हो जाते हैं, ये पीछे लग जाते हैं जिसके भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस लिए पीछे लगे आपके। आपको भगवान से मिलाना है, आपको उससे मिलाना है जिसके आप बच्चे हैं, आपको आपसे मिलाना है। अपने से भी तो मनुष्य बहुत दूर चला गया है, आपको सत्य की पहचान करानी है, जिस सत्य की पहचान स्वयं परमात्मा ने कराई है वो हमारा है ना, भगवान हमारा परम पिता है, पता चल गया ना। पिता है तो हमारा है। सोच के देखो, भगवान हमारा है, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम कैसे होंगे? पहचाने आप सभी अपनी शक्तियों को, समस्याओं से परेशान होकर अपने जीवन के सुख को नष्ट न कर दें, अपनी शक्तियों को पहचानो। समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, परेशान न हो। बहुत अच्छी चीज अंडरलाइन कर लें जीवन में किसी भी समस्या को, यदि ज्ञान युक्त दृष्टि से देखा जाए, यदि विशाल दृष्टि से देखा जाए, यदि स्वार्थ रहित दृष्टि से देखा जाए, तो वो समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमें दिखाई देती है। विश्लेषण करना आप समस्याओं का, मनुष्य का कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है, उसको देखते हुए मनुष्य समस्या के बारे में सोचता है, वो अपनी शक्तियों को भूल जाता है, उसे दिखता है कितनी बड़ी बात हो गई है। पर अगर वो ज्ञान लेकर, ज्ञान युक्त होकर, निस्वार्थ भाव से समस्याओं का दिग्दर्शन करे, तो उसे लगेगा वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी मुझे लग रही है, वो मामूली है। एक एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बड़ा, देखो उषा बहन आपको क्लास करा गई, सुनाया एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, अभी तो इनकी कार ट्रक के अंदर चली गई पीछे से, और जो आगे का होता है ना कार के, वहीं रुक गई। अगर और थोड़ी पीछे हो जाती तो इनका गर्दन साफ। अभी यहां ये सोच के मनुष्य दुखी भी हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कार नष्ट हो गई, कैसा बुरा समय था, और वो ये सोचकर सुखी भी हो सकता है, हम सुरक्षित हैं, हमें कुछ हुआ नहीं। महत्व तो मनुष्य का है ना, कार का थोड़ा ही, क्रिएटर तो मनुष्य है, कार तो फिर मिल सकती है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कितनी बड़ी चीज थी कि 100 की स्पीड से चलती हुई कार ट्रक के पीछे घुस जाए और दोनों सुरक्षित हों, भाग्य हो गया ना। तो हम सभी समस्याओं के बारे में अपने एटीट्यूड्स को, अपने दृष्टिकोण को बदलें। मैं आपको याद दिला रहा हूं, आज से आप याद रखेंगे, बहुत सुखी हो जाएंगे। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, उसके भक्त मात्र नहीं, उसके आगे हाथ जोड़कर शीश झुकाने वाले नहीं केवल, ये तो हम उसको सम्मान देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु हम हैं उसके, बोलो मुख से क्या, बच्चे। वो सर्वशक्तिवान है, हम भी शक्तिशाली हैं। इसको हम अपनी भाषा में नाम देते हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जिनका बाप सर्वशक्तिवान हो उसके बच्चे कमजोर होंगे क्या? सोचो, हम अपनी शक्तियों को भूलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु शांति दो। वो याद दिलाते हैं, मैंने तो तुम्हें बहुत शांति दी थी, कहां खो दी? हे प्रभु हमें शक्ति दो। उनको हंसी आती है, तुम मेरे बच्चे और भिखारी बन गए। राजा का बच्चा गलियों में जाके कहे कोई रोटी खिला दो, राजा को लज जाएगी ना। पहचान लें आप स्वयं को, हम भौतिकता के इस भाग दौड़ में अपने को भूल गए हैं। हम शक्तिशाली हैं, रोज सवेरे उठकर अब मैं आपको जीवन को आनंदित करने का एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, मन की शक्तियों से संबंधित। सब्जेक्ट वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं 5 मिनट में आपके सामने वो बात रखता हूं। जब हम रोज सवेरे उठते हैं, तो उठते ही हमारा, जब हम उठते हैं हमारा मन शांत होता है ना, थोड़ा जल्दी उठें। और मन शांत है, इसका फायदा उठा लें, मन शांत है तो अंतर मन जागृत है। बहुत सुंदर एक बात पर आप ध्यान देंगे, सवेरे जब हम उठे हमारा मन शांत है तो अंतर मन जागृत है, उस समय जो विचार आप अपने को दे देंगे अंतर मन उसे स्वीकार कर लेगा और वैसा ही जीवन हो जाएगा। बहुत सुंदर फॉर्मूला है। दूसरी एक बात आप ध्यान देंगे, सारा दिन जो संकल्प आप बार बार करते हैं उसका मानो आप आह्वान करते हैं। ध्यान से सुन लें सभी, जो संकल्प मनुष्य बार बार करता है उसे वो बुलाता है। मैं पहले इसके बारे में एक उदाहरण देता हूं, फिर सवेरे उठते ही रोज आप क्या सोचेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे ताकि जीवन सुखी हो जाए। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, ये फोन ऐसे फोन बहुत लोग करते हैं, आज भी आए दो फोन ऐसे ही, बहुत कर्ज हो गया है, कर्ज उतरेगा इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती, एक ही तरीका लगता है कि मैं मर जाऊं कर्ज उतर जाए, लेकिन मरने से कर्ज नहीं उतरता, उस पर एक पर्दा आ जाता है केवल। तो क्या करूं मेरा कर्ज उतर जाए? तो मैं उनसे पूछता हूं, कितनी बार याद करते हो बहुत कर्ज है बहुत कर्ज है? कहा सारा दिन यही तो याद रहता है, 50 लाख कर्ज है उतरेगा नहीं, बहुत कर्ज है, मर गए हम तो बहुत कर्ज है। तो मैंने कहा ये विचारों में गलती हो रही है, आप बार बार कर्ज को याद कर रहे हैं, इसका अर्थ है आप कर्ज का आह्वान कर रहे हैं। इस संकल्प को एक तरफ रखकर दूसरा संकल्प करेंगे, मैं बहुत धनवान हूं। देखिए यहां थोड़ी सी एक गंभीर बात है कि धन है नहीं पास में, और हम संकल्प करेंगे मैं बहुत धनवान हूं। तो पहली बात जो मैं कर रहा था वो आप सब पक्का कर दें आज से, जैसा आप अपना जीवन देखना चाहते हैं सवेरे उठकर पहले 10 मिनट वैसा ही चिंतन करें। सवेरे उठते ही आप सोचना, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं, पक्की है ना ये बात? तो इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं, कोई किसी भी धर्म का हो, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं, और खुले दिल से सच्चे दिल से संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं। 3 संकल्प, आपके जीवन की धारा पहले दिन से बदल जाएगी। ये नहीं कहना बहुत दुखी हूं, इस बहू ने तो दुखी कर दिया मुझे, ये तो न मरती न हमें जीने देती। बार बार सोचना मैं तो बहुत दुखी हूं, इस बीमारी ने तो मुझे बहुत दुखी कर दिया, मैं तो बहुत तंग हूं, तो दुख आपके द्वार से जाएगा नहीं। चेंज करो अपने संकल्पों को, मैं भगवान का बच्चा हूं, वो सुखों का सागर है, मैं बहुत सुखी हूं। माताओं के चेहरे में देख रहा हूं, लगता है बड़ा भारी काम है ये, तो हैं तो दुखी, हैं तो दुखी, और सोच लूं बहुत सुखी हूं, कैसे होगा ये? माताओं के चेहरों पे थोड़ी उदासी दिख रही है मुझे, बहुत माताएं खुश नहीं है आजकल, माताओं पे ज्यादा दबाव है। भाई लोग तो क्या बाहर जाते हैं ना, ऑफिस में बिजनेस में काम धंधे में लोगों से मिलेंगे, भूल भाल जाता है सब कुछ, माताएं घरों में रहती है, थोड़ी भारी हो गई है माताएं। भारी नहीं हो, क्या करो अपने मन के बोझ उसे दे दो जो आपका परम पिता है, जो सारे संसार के बोझ उठाने वाला है उसको अपने बोझ दे दो, हल्के हो जाएंगे। मेरे पास बहुत माताएं आती है ना, बहुत सताया है, 4 लड़के थे, पहले इंतजार करते थे बच्चे हों, बच्चे हुए, 4 लड़के हो गए, बहुत खुशियां मनाई, इनकी शादी हो जाए, शादी हो गई, अब 4 बहू आई, अब जीना मुश्किल हो गया है, सारी खुशी ले गई। जीवन में जो कुछ सोचा था वो तो हुआ ही नहीं, लेकिन हम दूसरों को बदलने से पहले अपने को बदल दें, बहुत अच्छा होगा। सुख दुख सब हमारे अपने हाथ में, हम चाहें तो बहुत सुखी रहें। हम भी बहुत बड़े बड़े संगठनों में रहते हैं, यहाँ देखो आपका परिवार होगा 5, 2, 7, 8, 10 का, हमारा परिवार है 1000 का। 1000 तो हम तीनों आश्रमों में रहते हैं, समर्पित लोग, तो हमारे बीच में भी तो कोई ऐसे ऐसे आते होंगे ना, या नहीं, या सारे देवता इकट्ठे हुए हैं, कुछ तो होगा ना। लेकिन हम लोगों की एजुकेशन ऐसी है, रोज सवेरे ऐसी पढ़ाई मिल जाती है कि अपने विचार बदलते हैं रोज। विचारों को बदलते चलना है, विचारों को महान बनाते चलना है। तो मैं आपको कह रहा था, सवेरे उठकर आप वो चिंतन करें जैसा आप अपना जीवन चाहते हैं। मैं एक स्टूडेंट की कहानी सुनाऊं आपको, अभी अभी की बात। मैं आगरा में था, MBA किया उसने फर्स्ट क्लास, लेकिन उसको आत्मविश्वास की इतनी कमी है। मेरे पास आया कि मेरी एक समस्या है, मेरा एक प्रश्न है, क्या, कि मुझे ऐसा लगता है मुझे जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, फाइनल स्टैंप लगाया हुआ है। मैंने उसे पूछा है, तुम्हें किसने बता दिया, क्या तुम भविष्य को जानते हो, ज्योतिषी हो क्या, कि तुम्हें पता है मुझे भविष्य में सफलता नहीं मिलेगी। मैंने पूछा, मुझे पता नहीं था, क्या पढ़ाई कहाँ तक की, कहा MBA किया है, कितने मार्क्स लाए हैं, फर्स्ट क्लास लाया है। तो मैंने कहा, ये सफलता नहीं है क्या, तुम क्यों सोच रहे हो कि सफलता नहीं मिलेगी, बार बार सोच रहा है वो लड़का, मुझे लगता है सफलता मेरे भाग्य में नहीं है। देखिए कितना गलत विचार। मैंने उसको बहुत कन्विंस किया और मैंने उसे काम दिया कि अब से 24 घंटे में 108 बार याद करके आना, मैं भगवान का बच्चा हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगले दिन आया वो 24 घंटे के बाद। मैंने पूछा, किया 108 बार याद, कहा हाँ याद किया। मैंने कहा, अब बताओ, पर मुझे सफलता मिलेगी नहीं ना। अपने मन में एक गलत विचार को ऐसा जड़ दिया है कि निकाले नहीं निकल रहा है। सब देख लें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ गलत विचार अपने अंतर मन में बीज की तरह बो दिए, उसे पानी भी दे रहे हैं। निकाल दो उन विचारों को जो आपके लिए कष्टकारी हैं। कई लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कल गाड़ी में चलेंगे पहले ही सोचेंगे एक्सीडेंट ना हो जाए। हमारा चिंतन ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है, हमारा चिंतन ही हमारा भाग्य का निर्माता है। इसलिए आज से मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखा देना चाहता हूं, और मेरा कल ऐसा होगा। रोज रात को सोने से पहले आप अपने कल का एक चित्र बना दो, विजन बना दो, मेरा कल ऐसा होगा, कल मेरे लिए खुशियों का भंडार लेकर आएगा, कल मुझे कदम कदम पर सफलता प्राप्त होगी, कल अगर बिजनेस है आपका, कल मुझे इतना लाभ होगा ही, बीमारी है, कल से ये बीमारी मेरी ठीक होने लगेगी, मेरा कल ऐसा होगा। परेशानी नहीं, पता नहीं मेरा कल कैसा होगा, ये नहीं, ये नहीं, कल आपके हाथों में। समझ लें आप इस बहुत गुह्य फिलोसफी को, भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, कोई और हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करता, भगवान नहीं, हम स्वयं। भगवान निर्माण करता तो ये भेदभाव क्यों हो जाता, फिर तो पिता है ना, सबका बराबर करता। मनुष्य ने स्वयं अपने भाग्य का निर्माण किया है, तो बहुत ध्यान दें, दो बातें मैंने आपको कही, वो चीज बार बार न सोचें जो आप नहीं चाहते, और सवेरे उठकर बहुत अच्छे अच्छे विचार करें। मैंने तीन विचार बताए आपको, मैं बहुत भाग्यवान हूं, दूसरा मैं बहुत सुखी हूं, तीसरा मैं बहुत, निकली नहीं अंदर से आवाज, धनवान हूं। धनवान भी हैं आप, अभी आपको पता लग जाएगा, धन वो कागज के नोट नहीं केवल, ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, खुशी का खजाना संसार में सबसे बड़ा खजाना है, शांति का खजाना कहीं किसी बड़े से बड़े मार्केट में भी नहीं मिलता, वो आपके पास आ सकता है, उसको आप कलेक्ट करो, उसको जमा कर दो, तो आप बहुत धनवान हो जाएंगे। पसंद है, बुलवाऊं मुख से, अभी बोलो जरा, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। खुले दिल से, जरा नींद सी आ रही आपको, तो फिर से, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, मैं इस संसार में बहुत सुखी हूं, मैं इस संसार में बहुत धनवान हूं। मैं आपको थ्योरी भी बता देता हूं, आप सोचते होंगे भला ऐसा बोलने से कुछ हो जाएगा क्या, कई लोग जो ज्यादा सोचते हैं ना वो कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, और जो अच्छी चीज है उनको भी सोच सोच के खराब बना लेते हैं। आपको जानना चाहिए ये संसार का खेल किस तरह चल रहा है। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये मैं आपको बहुत सहज भाषा में बता रहा हूं, जो कुछ हम सोचते हैं, हमारे विचारों की तरंगें सारे ब्रह्मांड में फैलती रहती हैं। सब जानते हैं जो कुछ हम बोलते हैं, हमारे बोल भी सारे में फैल जाते हैं ना, तरंगे बोल की, ऐसे जो कुछ हम सोचते हैं, आपको पता होना चाहिए, घर में बैठ के आप जो कुछ सोच रही हैं उसकी तरंगे, उसकी किरणें सारे ब्रह्मांड में फैल रही हैं, और वो संकल्पों की तरंगे ब्रह्मांड से मिलकर ही घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, हर चीज का निर्माण करती हैं। ये है बहुत गहरी फिलोसफी। जो सबसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन, उसने भी ये बात कही। बड़े बड़े फिलोसोफर्स को ही ये बात मालूम थी, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकों को ये बात मालूम थी, आज से आपको भी मालूम हो गई ना। जो कुछ हम सोचते हैं हमारी मन की तरंगें इस ब्रह्मांड में फैलती हैं, और उससे मिलकर हर चीज का निर्माण करती हैं। इसलिए सब कुछ हमारे हाथ में है, पर ये बोलने में इफेक्ट तब होगा जब आप संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोलोगे। अंतर आप समझ ही रहे हैं कि मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी हम संकल्प कर रहे हैं मैं बहुत धनवान हूं, ये अंतर मिटा देना है। समझ गए ना अंतर, कि पैसा तो है नहीं, है आपने रोका हुआ है उसको। एक गरीब के पास गरीबी इसलिए है कि उसने पैसे को रोक दिया है, ये सोच सोच कर मैं गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, बच्चों को पढ़ा दो, ना भाई पैसा नहीं, हम तो गरीब हैं, बार बार गरीब हूं गरीब हूं। तो उनके संकल्पों की तरंगें प्रकृति में मिलती हैं और गरीबी वापस आ जाती है। हाँ बताया ना मैंने, मैं धनवान हूं, कर्जदार हूं, ये छोड़ दो सोचना, और भी तरीके आपको कमाना है। आपने कर्ज क्यों किया, मान लो कर्ज लेके शराब ही पीते रहे हो, और कर्ज हो गया और अभी भी पीना चालू रखा हो, तो कर्ज उतरेगा नहीं, पीछे के जो कारण हैं उनको भी ठीक करना होगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि सवेरे उठते ही अखबार नहीं पढ़ें, आधे घंटे के बाद पढ़ें। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि मन शांत है, अंतर्मन जगा हुआ है। अखबार की पहली लाइन कैसी होती है रोज? सबसे खराब, खतरनाक, अशांति देने वाली। आपने वो पढ़ी, वो आपके अंदर गई। सूक्ष्म अशांति को सवेरे सवेरे आपने अंदर डाल दिया है। इसलिए सवेरे उठकर कम से कम 10 मिनट सुंदर विचारों में। अब आप यहाँ राजयोग मेडिटेशन भी सीख रहे हैं, राजयोग का अभ्यास करके फिर चलो आगे, फिर कदम आगे बढ़ाओ, ताकि सवेरे सवेरे आप अपने को चार्ज कर दें। चार्ज जैसे हम रोज अपना फोन चार्ज करते हैं ना, बैटरी चार्ज करते हैं, हम अपने को भी चार्ज करें। तो ये मन की शक्ति बहुत जबरदस्त है। और भी मैं आपको कुछ विचार बता देता हूं सवेरे के लिए। मैंने आपको याद दिलाया, हमारा परम पिता सर्वशक्तिवान है और हम उसकी संतान। मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये शब्द आप याद रखना। तो सवेरे उठते ही आप ये याद कर लेना और फिर याद करना, मैं संसार की सभी समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं। बहुत बड़ा विचार है ये। ये आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाएगा। मैं संसार की सभी समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं। आपको लगेगा ये समस्याएं तो आई हैं जाएंगी, आई हैं जाएंगी, आई हैं जाने के लिए, ये हमें कुछ देकर जाएंगी, हमें नष्ट करके नहीं जाएंगी, हमारी मानसिक शक्तियों को छीन के नहीं जाएंगी, हमारी खुशी लेकर नहीं जाएंगी, ये हमें कुछ अच्छी चीज सिखा कर जाएंगी। एक बात पसंद है, हम शक्तिशाली हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं वो बात, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। सब अपने अंदर उतार लें इसको, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। दूसरा संकल्प, मैं भगवान का बच्चा हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। संकल्प करेंगे आप सवेरे सवेरे, सुंदर विचार। आप सब जानते हैं हमारी भारतीय सभ्यता में कुछ छोटी छोटी बातें रोज प्रचलित हैं, रोज की। जैसे जब घर से चलो तो ये खा के न चलो, ये खा के चलो, है ना? हर जगह प्रथा। लोग सोचते हैं क्या अंधश्रद्धा लिए बैठे हैं, इससे भला कुछ होता है? किसी ने कहा घर में प्रवेश करो तो पहले बायां पैर न रखो, दायां रखो। आप नया घर बनाते हो, गृह प्रवेश करते हैं, पंडित को बुला के कुछ कराते हैं ना, नींव रखाते हैं घर मकान बनाने की, कुछ कराते हैं ना। कोई भी कर्म जब हम शुरू करते हैं, उससे पहले जो विचार हमारे मन में होते हैं उसका प्रभाव पूरे कर्म पर पड़ता है। इसलिए ये प्रथा बन गई, सभी धर्मों में ऐसी प्रथाएं हैं। कर्म पर कर्म से पहले के विचारों का पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने विचारों को शुद्ध करना। सुखी जीवन वही जी सकते हैं जिनके विचार पॉजिटिव हैं, विचार अच्छे हैं। अन्यथा छोटी छोटी बात हमारे सुखों को छीनती रहेगी। अब जीवन की धारणा की एक और अच्छी बात, हमें अपने मन को इतना नाजुक नहीं बना देना है कि कोई भी हमारी खुशी छीन कर चला जाए। कई लोगों ने अपने मन को इतना सेंसिटिव बना दिया है, इतना नाजुक बना दिया है कि दूसरों ने कुछ कहा और मूड ऑफ, सारा दिन खाना भी अच्छा नहीं लग रहा, इसने आज मुझे ये कहा। जैसे बच्चे रूस जाते हैं ना, सबको अनुभव है, अब बड़ों को रूसना नहीं है। जैसे कहने वाले ने सहज भाव से कह दिया, वैसे ही सुनने वाले भी सहज भाव से सुन के खत्म कर दें, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं। ये कला है, इजी गोइंग नेचर, सहज भाव से जीवन जीना, सहज भाव से आपस में रहना, संबंधों को निभाना, एक दूसरे को बात कहना और सुनना सहज भाव से। जिस व्यक्ति ने अपनी नेचर को इजी बना लिया, उसका जीवन इजी हो जाता है। जो सरल चित्त बन गए, उनका जीवन सरल। जो व्यक्ति हर बात को सीरियसली लेता है, उसके जीवन में समस्याएं ज्यादा आती हैं। सहज भाव से लेना है। मैंने आपको एक बात कही, रिपीट भी की, समस्या आई है चली जाएगी, सहज भाव से ले लो। बीमारी आई है जाएगी, लेकिन डॉक्टरों ने बता दिया डायबिटीज होगी, हो गई, अब ये जाएगी नहीं, गलती यही कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि डायबिटीज होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अब तो गोली खाते रहो, जीते रहो, ये जाएगा नहीं। हम क्यों ना संकल्प करें, जो आया है वो जाएगा, जाएगी बीमारी। अब मैं आपको छोटी छोटी एक दो चीज और बता देता हूं। सहज भाव से जीवन जीना है, पसंद है सबको, सहज भाव, काम भी करें सहज भाव से, गाड़ी भी चलाएं सहज भाव से, हर काम को टेंशन न बना दें। चाय भी बनानी है, मेहमान आ गए, ये नहीं जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी में पत्ती की जगह चाय डालें और चाय की जगह चीनी, जल्दी नहीं, आनंद पूर्वक। इसलिए जीवन का एक सुंदर सा फॉर्मूला ले लें, मुझे अपने हर कर्म को एंजॉय करना है, मुझे अपने हर कर्म का आनंद लेना है, हर कर्म का आनंद। आप देख सकते हैं खिलाड़ी खेलते हैं, किसी भी गेम में आप देख लो, जो आनंद ले रहा है ना वो विजयी है। और जिसने तीर लगाना है तीरंदाजी में और पहले घबरा गया, लगेगा या नहीं, तो उसका एक भी निशाने पे नहीं लगेगा। और जिसको आनंद लेना है वो संपूर्ण सफल होगा। भोजन खाने का भी आनंद लो, ये नहीं टीवी पर एक ध्यान, दूसरा ध्यान अखबार पर, तीसरा समस्याओं पर, फिर खा रहे हैं फटाफट, क्या नुकसान होगा? जान लें सभी, हम टेंशन में हैं, हम टीवी देख रहे हैं और भोजन खा रहे हैं, तो यहां से जो लार निकलती है ना वो कम निकलेगी, भोजन हजम ही नहीं होगा। इसलिए हमारी भारतीय कल्चर में भोजन खाने के अच्छे नियम थे, शांति से खाना है, आनंद पूर्वक खाना है। इसलिए भोजन खाने को भी आप एक साधना बना दो, भाई 15 मिनट में हमें भोजन खाना है आनंद पूर्वक। आजकल लोग बातचीत करते हुए खाते हैं, वो सेकंड बात हुई, लेकिन अगर हम साइलेंस में आनंद पूर्वक खाएंगे, हर पीस का आनंद लेंगे, तो भोजन भी बहुत अच्छी दवाई बन जाएगा। हर कर्म का आनंद लें, माताएं भी ध्यान दें, भोजन बनाने का आनंद लें। हम अपने यहां हमेशा देखते आए, जब हमारे यहां बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो हमारे यहां आनंद छाया रहता है, टेंशन नहीं होता कि बहुत लोग आ गए। जितने ज्यादा लोग आते हैं उतना ही ज्यादा आनंद रहता है, उतना ही भोजन ज्यादा टेस्टी बनता है, हम लोग भी हैरान होते हैं, भोजन तो वही है, पत्ते गोभी आलू ही बनाई है, पर आज आनंद बहुत आ रहा है खाने में। पता चलता है ये आनंद मन का आनंद है। आनंदित कर दें आप अपने हर कर्म को। घर में बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, दबाव नहीं, माताएं दबाव रखती हैं बच्चों पे, पढ़ो पढ़ो, जबरदस्ती बच्चे होशियार नहीं किए जा सकते। सब माताओं को एक काम भी देना चाहता हूं मैं, भाइयों को भी माताओं को भी, बहुत अच्छा एक काम है आप सबके लिए सुखी जीवन जीने के लिए। अपने घरों का माहौल हल्का और खुशनुमा बनाओ, प्रेशर वाला नहीं। जहां प्रेशर है वहां न मनुष्य स्वस्थ हो सकता, न बच्चों की बुद्धि का विकास होगा, न जीवन जीने का आनंद आएगा। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाएंगे, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना, एक दूसरे की महिमा करो आप। अब देखो आपके घर में वातावरण लाइट हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, आपस में बहुत प्यार होगा। एक हफ्ता करके देख लेना यहां से जाकर, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना। भोजन बनाया है तो कम से कम खा के ये तो कह दो बहुत टेस्टी हो, आनंद आ गया आज तो, और खा के ये कह दिया क्या भोजन बनाया, नमक भी डालना नहीं आता, तो जो माता जी थोड़ी थकी होगी और थक जाएगी, उदास हो जाएगी कि मुर्गी अपनी जान से गई। ऐसा नहीं, बच्चों ने थोड़े भी अच्छी मेहनत की पढ़ाई में, वाह वाह करो, बहुत होशियार हो तुम, बार बार ये न कहो तुम तो बुद्धू हो, कोई काम के नहीं है, फेल हो जाओगे, नाम बदनाम करोगे, हमारा पैसा भी ऐसे ही गंवाओगे, ये नहीं, तुम बहुत होशियार हो, चलो आगे बढ़ो। एप्रिशिएट करेंगे, पसंद है। अब मैं लास्ट बात उनको बता देता हूं जिनको रात को नींद नहीं आती। मैं पूछूंगा नहीं, कहीं आज भी आपकी नींद खत्म हो जाए। सहज एक विधि मैंने अपनाई है, दो रोगों के लिए अपनाई है, डिप्रेशन और नींद ना आना। मेरे लिए भी ये चमत्कार है कि जिस व्यक्ति को 11 साल से नींद नहीं आती, डिप्रेशन में 7 दिन में आनंदित, गोली खत्म। एक परिवार का तो समाचार इतना खराब था, उनके घर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे किसी की मृत्यु है, यहाँ रोज मृत्यु है, घर में एकदम उदासीनता। माताजी थी बहुत डिप्रेशन, अति डिप्रेशन, और गोली खाने से चक्कर आते थे, मुंह से झाग आते थे, चक्कर खा के गिर जाती थी। 7 दिन केवल अभ्यास किया, उसमें से एक अभ्यास मैं बता रहा हूं, केवल विचार परिवर्तन है। मैंने उन्हें कहा आप इस चीज को जान लें, हम भगवान के बच्चे हैं तो हम महान हैं। मैंने उन्हें सिखाया, महान हो तुम, यू आर ग्रेट, स्वीकार करो इसे। और फिर मैंने कहा कि रात को सोने से पहले 108 बार लिख दो, मैं एक महान आत्मा हूं। पहले स्वीकार कर लो, मैं भगवान की संतान हूं, मैं महान हूं, फिर इसको बैठ कर लिखो। तो अधिकतर का अनुभव ये हुआ वो 108 पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही सो गए। अधिकतर का अनुभव है ये। पिछले साल ही 7 साल से एक साहूकार माता, उसको नींद नहीं आती थी, गोली 2 खाती थी रोज। मैंने कहा आज एक गोली खानी है आपको और 108 बार लिखना है। पहले दिन उसने 108 बार लिखा और एक गोली खाई और सो गई। दूसरे दिन मैंने कहा आज आधी गोली खानी है और 108 बार लिखना है। उसने आधी गोली खाई और 108 बार लिखा और सो गई। तीसरे दिन मैंने कहा कि अब गोली नहीं खानी है, 108 बार लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूं। उस दिन उसका हाल ये था कि उसने मुश्किल से 50 बार लिखा होगा, पेन कहां पड़ा, कागज कहां, और वो सो गई। मैंने बताया ये था कि खाट पे बैठ के ही लिखना ताकि सो सको, कुर्सी पे नहीं। और उसने अगले दिन मुझे आके अनुभव सुनाया कि आज सोने से मुझे ऐसा लगा कि मैं 11 साल के बाद पहली बार सोई हूं, क्योंकि गोलियों की नींद नींद थोड़ा ही होती है। तो आप सभी सुख से सोना, सुख से उठना, उठते ही अपने मन को सुंदर विचारों से भरना और अपने को दुआएं दे दो, आज से मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत स्वस्थ हूं। अपने को दुआएं देंगे, अपने को शुभ भावनाएं देंगे और हम सब की भी आपके साथ यही शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति। अभी हम योग करके ही उठेंगे, मैं आपको 3 मिनट मेडिटेशन कराऊंगा। भाई ट्यून बजाएंगे,
3 मिनट योग चलेगा।
हाँ आपको कुछ कहना हो कह दो, धन्यवाद। धन्यवाद तो मैंने दे दिया सबको। चलो अब हम सब अभ्यास करेंगे। ऊपर देखें आप बुद्धि के नैन से, आकाश के परे महाज्योति सर्वशक्तिवान, देखने की कोशिश करें उसे, उनसे चार ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। वो हमारे परम पिता हैं, हमारे हैं। अब उनसे निकली हुई ये शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं। शक्तियों की किरणों का एक फाउंटेन, झरना नीचे बह रहा है, मुझ में समा रहा है। परमात्म शक्तियां मुझ में समाने लगी। देखते रहे इस सीन को। ओम शांति। ऐसे ही रोज उठकर कर लिया करें थोड़ी देर।
किन शब्दों में धन्यवाद करें आपका? सचमुच एक एक पॉइंट कैसे हमारे प्रैक्टिकल जीवन में यूज करने की है और कितने सरल शब्दों में जीवन को सुखमय बनाने का जो राज है वो हम सभी के आगे रखा, तो इसके लिए हम सभी एक हाथ की ताली बजा करके भाई जी का धन्यवाद करेंगे। सचमुच इस सूत्र को हम जीवन में अपना लें कि जो कुछ हमें अपने लिए चाहिए पहले वो दूसरों को देना शुरू कर दें। आपको प्यार चाहिए तो आप दूसरों को प्यार बांटना शुरू कर दो। सम्मान चाहिए तो दूसरों को सम्मान दो, क्योंकि जो देंगे वो हमें स्वतः मिलेगा। एक एक विचार कैसे वाइब्रेशंस के रूप में वातावरण में फैलता है उसका प्रभाव आप खुद जब इन बातों को प्रैक्टिकल जीवन में अजमाओगे तो अनुभव कर सकोगे। तो एक बार फिर से हम सभी भाई जी का धन्यवाद करते हैं।